नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोकराझार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर फिट इंडिया रविवार को साइकिल पर अभियान में हिस्सा लिया। उड़ीसा साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक और पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ का आज सवेरे 91 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। आतंकवाद रोधी मुद्दों पर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की प्लस ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री लक्सन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग का यह 10वां संस्करण 19 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में शामिल देश वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक समेत कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हर वर्ष इस बैठक में विभिन्न देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्ति, पत्रकार हिस्सा लेते हैं और वैश्विक स्थिति तथा विभिन्न समकालीन मुद्दों पर सहयोग के अवसर तलाशने पर चर्चा करते हैं। सम्मेलन का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोकराझार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बोडो समझौते की सभी धाराओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि समझौते की 82% धाराएं पहली ही पूरी की जा चुकी है। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते की शेष धाराएं 2 साल के भीतर पूरी कर ली जाएगी। गृह मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में जल्द ही UN ब्रह्मा की एक प्रतिमा लगाने के अलावा दिल्ली में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बोडोलैंड क्षेत्र में अब शांति कायम है। आज बाद में केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली लौटने से पहले 8 पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि सरकार शासन में नवाचार और दक्षता पर बल देती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल नवाचार भारत के वित्तीय परिस्थिति की तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है और असंख्य लोगों को सशक्त बना रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर फिट इंडिया रविवार को साइकिल पर अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना मोटापे से निपटने का एक प्रभावी तरीका है, हो सकता है, और यह लोगों में फिट रहने के लिए जागरूकता भी पैदा कर सकता है। फिट इंडिया रविवार को साइकिल पर कार्यक्रम का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ और मेरा युवा भारत के सहयोग से किया जाता है। उड़ीसा साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक और पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ का आज सवेरे 91 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की गहरी छाया पड़ गई है, जो उड़ीसा साहित्य में एक युग का अंत है। 1957 बैच के IAS अधिकारी रमाकांत रथ ने उड़ीसा के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया और केंद्र सरकार में भी कई प्रमुख पदों पर रहे। उनकी काव्य कृतियां अपनी गहराइयों और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कृतियों में कविताएं श्री राधा विशेष रूप से शामिल है। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1998 से 2003 तक भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। रमाकांत रथ का अंतिम संस्कार कल पुरी के स्वर्गद्वार में किया जाएगा। केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आईआईटी चेन्नई में 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट सुविधा है और जल्द ही यह दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट सुविधा बन जाएगी। मंत्री ने कल आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का लाइव प्रदर्शन देखा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही हाइपरलूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में विकासाधीन तकनीक ने अब तक किए गए परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में विकसित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा नवाचार के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे ने इस हाइपरलूप परियोजना के लिए वित्तीय निधि और तकनीकी सहायता प्रदान की है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने 88 करोड़ मूल्य की मेथमफेटामाइन टैबलेट का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है और इस सिलसिले में इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एनसीबी के प्रयासों की सराहना की है। गृह मंत्री ने मादक पदार्थ मुक्त भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आतंकवाद रोधी मुद्दों पर आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की प्लस विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और मलेशिया 2 दिवसीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई एक मजबूत और व्यापक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य आसियान के रक्षा बलों और बातचीत में शामिल उसके भागीदारों के अनुभवों को साझा करना है। बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड सहित 10 आसियान देशों के प्रतिनिधिमंडल और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, जापान, चीन, अमेरिका और रूस के 8 संवाद साझेदारों के साथ साथ तिमोर लेस्ते और आसियान सचिवालय भाग लेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर आज भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। उड़ीसा तथा कच्छ में भी अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल और माही में अलग अलग स्थानों पर अगले 2-3 दिनों तक गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत में तूफान और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। आज देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि देश के प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकारों और समर्पित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीकाकरण कवरेज के तेजी से विस्तार के लिए वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण को प्रभावी बनाना था। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।